क्या होगा अगर कोई ये कहे कि दुनिया के सबसे पवित्र और मतलब आदरणीय माने जाने वाले जो ग्रंथ हैं, उनमें से एक जानबूझकर गलत बातों और झूठे तर्कों से भरा हुआ है?
अरे ये विचार ही थोड़ा असहज करने वाला लगता है ना।
बिल्कुल, मतलब मैं यही सोच रही थी कि हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि अगर कोई किताब धार्मिक है या पवित्र है तो उसका हर एक पन्ना, हर एक वाक्य एकदम परम सत्य होना चाहिए।
एकदम ब्लैक एंड व्हाइट।
हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ग्रंथ ना एक सीधे साधे मेडिकल एक्सरे की तरह हो, जहाँ सब कुछ शीशे की तरह साफ हो। अगर कोई समस्या है तो वो साफ दिखेगी, और समाधान है तो वो सीधे शब्दों में लिखा होगा।
सही कहा। और देखो, ये हमारी एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। हमारा दिमाग ना चीजों को स्पष्ट काले या सफेद रंग में देखना पसंद करता है। इससे दुनिया थोड़ी कम जटिल और ज्यादा सुरक्षित महसूस होती है। मैं कहूंगा कि जब कोई भी इंसान प्राचीन या धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है तो वो वहां अपनी उलझन सुलझाने जाता है, ना कि नई उलझनों में पढ़ने।
वही तो। लेकिन जब हम प्राचीन साहित्य या मानवीय पीड़ा और गहरी बुद्धिमत्ता की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो वो जो एक्सरे मशीन वाला लॉजिक है वो अचानक काम करना बंद कर देता है।
बिल्कुल बंद कर देता है।
और बस यहीं से हमारे आज के इस स्रोतों के गहन विश्लेषण की शुरुआत होती है। आज हम डॉक्टर जॉन वॉल्टन के बुक ऑफ जॉब पर दिए गए तीसरे व्याख्यान के स्रोतों का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं।
बहुत ही दिलचस्प स्रोत है ये,
है ना? और हमारा आज का मिशन एक बहुत ही अजीबो गरीब और हैरान करने वाले विरोधाभास को सुलझाना है।
तो विरोधाभास क्या है?
मुद्दा ये है कि अगर बुक ऑफ जॉब के मुख्य पात्र जैसे खुद जॉब और उसके तीन दोस्त, अगर वो पूरी किताब में लगातार गलत बातें कहते हैं, उनकी थियोलॉजी यानी उनका ईश्वर ज्ञान दोषपूर्ण है, तो उस पूरी किताब को ईश्वरीय प्रेरणा से रचित यानी इंस्पायर्ड और प्रामाणिक कैसे माना जा सकता है?
हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि हम एक ऐसी डिक्शनरी पर भरोसा कर रहे हैं जिसमें शब्दों के अर्थ जानबूझ के गलत लिखे गए हों।
ये विरोधाभास सच में किसी को भी चौंका सकता है। और देखो, समस्या तब शुरू होती है जब हम आज के यानी आधुनिक युग के चश्मे से एक प्राचीन ग्रंथ को देखने की कोशिश करते हैं।
सही बात है।
हम जैसे ही प्रेरणा या इंस्पिरेशन शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि कोई दिव्य शक्ति किसी इंसान के कान के पास खड़ी होकर हर एक शब्द डिक्टेट कर रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बॉस अपने सेक्रेटरी को लेटर लिखवाता है।
हाँ, वर्ड टू वर्ड।
बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर वॉल्टन के स्रोत हमें साफ बताते हैं कि प्राचीन संदर्भ में प्रेरणा का ये मतलब कतई नहीं था।
मुझे ना ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अगर हम कह रहे हैं कि ये किताब ईश्वरीय प्रेरणा से लिखी गई है, तो इसका असल में क्या अर्थ बचता है?
मैं समझाता हूँ।
क्योंकि एक मिनट, अगर एलिफाज, जोफर और बिलदाद जैसे पात्र लगातार एक गलत धारणा को सही ठहराने में लगे हैं, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि ईश्वर उनके दिमाग में वो गलत विचार डाल रहे थे? ये बात तो तर्क के बिल्कुल खिलाफ जाती है।
हाँ, और यहीं पर हमें प्रेरणा की परिभाषा को फिर से सेट करने की जरूरत है। न्यू टेस्टामेंट में इसके लिए जो मूल शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, उसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वर श्वासित, यानी गॉड ब्रीथ्ड।
गॉड ब्रीथ्ड, अच्छा।
हाँ, अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ईश्वर ने हर एक शब्द को अपनी मोहर लगाकर प्रमाणित कर दिया है कि भाई ये सार्वभौमिक सत्य है। इसका सीधा सा अर्थ बस इतना है कि इस पूरी किताब, इस पूरे आख्यान का मूल स्रोत और इसके पीछे का जो अंतिम उद्देश्य है वो ईश्वरीय है।
अच्छा, तो मतलब ओवरऑल उद्देश्य मायने रखता है।
बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि ये किताब प्रामाणिक है यानी अथॉरिटेटिव है, तो इसका अर्थ ये है कि ये हमें वो जानकारी देने का अधिकार रखती है जिस पर हम कुल मिलाकर भरोसा कर सकते हैं। किताब की प्रामाणिकता इस बात में निहित है कि लेखक उस पूरी कहानी के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहता है, ना कि इस बात में कि कहानी का कोई कोई विशिष्ट पात्र उस खास पल में क्या बोल रहा है।
ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। क्या हम इसे एक फिल्म डायरेक्टर के नजरिए से देख सकते हैं?
हाँ, बताइए।
मान लीजिए कोई बहुत ही शानदार फिल्म डायरेक्टर एक कहानी लिखता है जिसमें एक बहुत ही चालाक विलेन है।
ठीक है।
अब वो विलेन पर्दे पर आकर झूठ बोलता है, लोगों को धोखा देता है और बहुत ही बुरे तर्क देता है। अब फिल्म की स्क्रिप्ट का जो अंतिम उद्देश्य है वो एकदम सही और स्पष्ट है। मतलब डायरेक्टर दर्शकों को अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क समझाना चाहता है।
बिल्कुल सही।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पर्दे पर विलेन जो गलत बातें बोल रहा है वो डायरेक्टर का अपना निजी दर्शन है।
अरे वाह, ये उपमा तो इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। यहां जो बात सबसे आकर्षक है वो यही है। एक प्रामाणिक ग्रंथ का अर्थ ही यही है कि हम उसकी अंतिम दिशा पर भरोसा करें और उसके प्रति खुद को समर्पित करें।
हाँ, लॉजिकल है।
जिस तरह कोई भी दर्शक विलेन के धोखेबाज डायलॉग्स को जीवन का आदर्श नहीं मान लेता, लेकिन फिर भी उस फिल्म की पूरी कहानी पर भरोसा करता है कि वो अंततः उसे एक सही निष्कर्ष तक ले जाएगी।
बिल्कुल।
इसी तरह बुक ऑफ जॉब एक प्रामाणिक स्रोत है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुद्धिमत्ता यानी विजडम को हम तक पहुंचाने का काम कर रही है। ये इसलिए प्रामाणिक नहीं है कि इसके हर पात्र का हर संवाद एक परम सत्य है।
अच्छा, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या खड़ी हो जाती है।
वो क्या?
अगर पात्रों के शब्द सच नहीं है और हमें पता है कि वे गलत बोल रहे हैं, तो फिर सच कहाँ छिपाए? ये तो किसी भी आम पाठक के लिए बहुत भारी काम हो गया ना।
हाँ, ये चुनौतीपूर्ण तो है।
तो क्या ये एक तरह का स्पॉटी एरर या मतलब गलती ढूंढो वाला खेल बन गया है, जहाँ हर पन्ना पलटते हुए पाठक को एक लाल पेन लेकर बैठना है कि अरे बिलदाद ने यहाँ ये गलत कहा, जोफर ने वहाँ वो गलत कहा?
असल में ना, लेखक यही चाहता है कि पाठक एक सक्रिय भागीदार बने। डॉक्टर वॉल्टन का स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये किताब जानबूझकर गलत सोच से, जिसे वो रॉन्ग हेडेड थिंकिंग कहते हैं, उससे भरी हुई है।
अच्छा, जानबूझकर?
ये कोई खामी नहीं है, बल्कि ये संवाद की एक तकनीक है। अक्सर इंसान सही बात को सीधे सुनकर उतना नहीं सीखता जितना वो एक गलत तरीके को विफल होते हुए देखकर सीखता है।
ये तो इंसानी फितरत है।
बिल्कुल। जब हम जॉब के दोस्तों के तर्कों को गहराई से देखते हैं ना, तो हम पाते हैं कि वे पूरी तरह से बेतुके नहीं हैं। वे बहुत तार्किक और धार्मिक लगते हैं, और बस यहीं पर पाठक की असली परीक्षा होती है।
यानी हमें बस सुनते नहीं जाना है, बल्कि दिमाग भी लगाना है।
एकदम सही। किताब का असली अधिकार इसके आख्यानों या पात्रों के भाषणों में नहीं है, बल्कि इसके बुद्धिमत्ता के संदेश में है। गलत तर्क की कमजोरियों को पहचान कर ही हमें उस गहरी बुद्धिमत्ता तक पहुंचने का रास्ता मिलता है।
ये बात मुझे इंसानी मनोविज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की याद दिलाती है। मतलब सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं होता जो साफ साफ झूठ लगे।
हाँ, बिल्कुल।
अगर कोई आकर कहे कि आसमान हरा है, तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा।
कोई भी नहीं करेगा।
लेकिन स्रोत के अनुसार इस किताब में जो स्वर्गीय विरोधी हैं या जो जॉब के दोस्त हैं, वो अक्सर ऐसी बातें कहते हैं जो सच के बहुत करीब होती हैं। उनका झूठ सच से बस क्या कहते हैं, थोड़ा सा ही अलग होता है, अ शेड ऑफ।
हाँ, शेड।
हाँ, तो ये तो वो 99% सच वाला मामला हो गया ना, जो 100% झूठ से कहीं ज्यादा खतरनाक और भ्रामक होता है।
इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। ये जो 99% सच वाली बात आपने कही, यही एक सच्चे और सावधान पाठक को बाकी लोगों से अलग करती है। स्रोत इसे फेथफुल इंटरप्रेटर कहता है।
फेथफुल इंटरप्रेटर।
हमारा काम सिर्फ शब्दों को रटना नहीं है, बल्कि अपनी आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना है। हमें यह पहचानना है कि टेक्स्ट असल में किस बात की पुष्टि कर रहा है और किस बात को खारिज कर रहा है।
जैसे
कि कोई उदाहरण, जैसे जब जॉब के दोस्त कहते हैं कि ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा और बुरे लोगों के साथ बुरा करता है, तो ये सुनने में बहुत ही न्यायपूर्ण और धार्मिक लगता है ना?
हाँ, आमतौर पर तो लोग यही मानते हैं।
लेकिन वे जॉब की निर्दोष पीड़ा को इस एक संकीर्ण ढांचे में फिट करने की कोशिश करके पूरी तरह गलत साबित होते हैं। वे सच के इतने करीब होकर भी करुणा और ईश्वरीय रहस्य के मामले में पूरी तरह विफल रहते हैं। बुद्धिमत्ता इसी बारीक अंतर को पहचानने में है।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो बात हो गई संवादों और तर्कों की, लेकिन इस चर्चा ने मेरे दिमाग में एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
बताइए, क्या सवाल है?
अगर पात्रों के संवादों का शाब्दिक अर्थ हमेशा सही नहीं है, तो क्या घटनाओं का सच होना जरूरी है?
ऐतिहासिकता का सवाल।
हाँ, मेरा मतलब है, क्या इस किताब से ज्ञान लेने के लिए ये मानना जरूरी है कि जॉब नाम का एक इंसान असल में दुनिया में रहता था, उसके पास असल में हजारों की संख्या में ऊंट और भेड़ें थी, और ये सब बिल्कुल उसी क्रम में हुआ जैसा किताब में लिखा है?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से बहस होती रही है। लेकिन अगर हम स्रोत के बड़े परिप्रेक्ष्य को देखें, तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि किताब की प्रामाणिकता इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती कि ये किसी वास्तविक अतीत की सटीक ऐतिहासिक रिपोर्ट है या नहीं।
अच्छा, तो इतिहास जरूरी नहीं है।
आधुनिक दुनिया में ना, हमने सच्चाई और इतिहास को एक ही मान लिया है। हमें लगता है कि अगर कोई चीज ऐतिहासिक रूप से नहीं घटी, तो वो सच्ची नहीं हो सकती। लेकिन प्राचीन बुद्धिमत्ता का नजरिया इससे बहुत अलग था। बुद्धिमत्ता हमेशा इतिहास की मोहताज नहीं होती।
ये सुनकर ना मुझे बचपन में सुनी कछुए और खरगोश की कहानी याद आ गई।
हाँ, वो तो सबने सुनी है।
जब हम वो कहानी सुनते हैं या किसी को सुनाते हैं, तो हम कभी ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि किसी जंगल में सच में उन दोनों ने कोई रेस लगाई थी।
बिल्कुल नहीं।
हम ये नहीं पूछते कि उस रेस का अंपायर कौन था या वो रेस किस तारीख को हुई थी। हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि धीरज और निरंतरता से जीत मिलती है। इस कहानी की सच्चाई और इसका अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो घटना असल में घटी थी या नहीं।
ये एक बेहतरीन उदाहरण है। कछुए और खरगोश की कहानी हमें एक अमूर्त विचार यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के माध्यम से सच्चाई बताती है। स्रोत में भी इसे समझाने के लिए यीशु के दृष्टांतों यानी पैराबल्स का बहुत ही सटीक संदर्भ दिया गया है।
अच्छा, यीशु के दृष्टांत।
हाँ, जब यीशु बीज बोने वाले किसान या भले सामूरी की कहानी सुनाते हैं तो उन कहानियों में यथार्थवाद होता है, जैसे किसान, बीज, खेत, लुटेरे, ये सब आम जीवन की चीजें हैं।
हाँ, जो लोग रोज देखते थे।
ऐतिहासिक व्यक्ति था जिसका कोई जन्म प्रमाण पत्र मौजूद है।
सही बात है।
बुक ऑफ जॉब भी बहुत हद तक इसी तरह काम करती है। ये केवल घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं है बल्कि ये बुद्धिमत्ता का एक गहरा संदेश है। अगर हम सिर्फ घटनाओं की सच्चाई में उलझ कर रह जाएंगे तो हम असल संदेश से चूक जाएंगे।
यानी हम सतह पर ही रह जाएंगे।
हाँ, अगर हम इसे बड़े परिदेश में देखें तो हम केवल घटनाओं को देखकर ज्ञानी नहीं बनते। घटनाएं तो दुनिया में हर पल घट रही हैं। बुद्धिमत्ता तब आती है जब हम उन घटनाओं के पार देखने की क्षमता विकसित करते हैं।
तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम घटनाओं से परे जा रहे हैं और संवादों की शाब्दिक सच्चाई से भी परे जा रहे हैं तो इन सबका अंतिम परिणाम क्या है?
आप ही बताइए, आपको क्या लगता है?
मतलब ये किताब घटनाओं से परे एक गहरी बुद्धिमत्ता सिखाती है, ठीक है, लेकिन ये हमें उस शक्ति यानी ईश्वर के बारे में असल में क्या बताती है?
ये एक बहुत ही गहरा सवाल है।
इंसान होने के नाते हम सब उस सर्वोच्च सत्ता के बारे में एक गहरी व्यक्तिगत और स्पष्ट जानकारी चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ईश्वर असल में कौन है, उसकी प्रकृति क्या है, वो पीड़ा क्यों आने देता है।
बिल्कुल।
लेकिन स्रोत के विश्लेषण से ऐसा लग रहा है कि ये किताब हमें ईश्वर के काम करने के तरीके की एक झलक तो देती है, लेकिन ये बहुत ही सीमित जानकारी देती है कि ईश्वर असल में कौन है। ये तो एक तरह का खालीपन छोड़ देता है ना?
मैं समझ सकता हूँ। ये खालीपन महसूस होना स्वाभाविक है क्योंकि ये हमारी उस इंसानी फितरत से टकराता है जहाँ हम हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं। हम हर रहस्य को अपनी समझ के छोटे से बक्से में बंद करना चाहते हैं।
हाँ, हमें सब कुछ कंट्रोल में चाहिए होता है।
श्रोता यहाँ एक बहुत ही गहरी और थोड़ी सी चुभने वाली बात कहता है। यदि कोई इंसान सोचता है कि उसने ईश्वर को पूरी तरह समझ लिया है, उसकी हर योजना को डिकोड कर लिया है, तो बहुत संभव है कि उसने असल ईश्वर को नहीं जाना बल्कि अपनी ही सोच और अपनी ही छवि में एक ईश्वर गढ़ लिया है।
बापरे, ये तो बहुत बड़ी बात है।
हाँ, ईश्वर की पूरी प्रकृति, इस ब्रह्मांड के चलने का पूरा ढांचा हमारी मानवीय क्षमता से बहुत बाहर है और ये किताब हमें यही विनम्रता सिखाती है।
और यहीं पर डॉक्टर वॉल्टन का वो सिलेबस वाला विचार आता है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया।
वो सिलेबस वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है।
चलिए इसे थोड़ा सरल करते हैं। जब कोई छात्र कॉलेज के पहले दिन क्लास में जाता है तो प्रोफेसर उसे एक सिलेबस थमा देता है। उस सिलेबस में कोर्स का प्लान होता है, उद्देश्य लिखे होते हैं और ये बताया जाता है कि छात्रों को क्या पढ़ना है और क्या असाइनमेंट करने हैं।
बिल्कुल।
उस सिलेबस को पढ़कर कोई भी छात्र उस प्रोफेसर के बारे में कुछ अनुमान लगा सकता है, जैसे कि वो कितना व्यवस्थित है या वो समय का कितना पाबंद है। लेकिन कोई भी छात्र ये दावा नहीं कर सकता कि वो सिलेबस उस प्रोफेसर की आत्मकथा है या उसमें प्रोफेसर के बचपन के राज छिपे हैं।
आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। वो सिलेबस केवल ये बताने के लिए होता है कि उस विशिष्ट क्लासरूम के भीतर एक छात्र के रूप में आपकी भूमिका क्या है। स्रोत के अनुसार बाइबल या कोई भी प्रमाणिक ग्रंथ ईश्वर की कोई बायोग्राफी नहीं है, ये ईश्वर के राज्य का एक सिलेबस है। ये हमें उतना ही बताता है जितना हमें इस ब्रह्मांडी योजना में एक भागीदार यानी पार्टनर बनने के लिए आवश्यक है।
पार्टनर बनने के लिए? अच्छा।
हाँ, ये हमें बताता है कि हमें दुनिया में कैसे व्यवहार करना है, हमारी उम्मीदें क्या होनी चाहिए और न्याय या पीड़ा को लेकर हमारा नजरिया क्या होना चाहिए।
लेकिन अगर मैं एक आम इंसान के नजरिए से देखूं तो मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी या कहूँ कि मुझे थोड़ी निराशा हो रही है।
निराशा
क्यों?
देखिए, हम सब ईश्वर के साथ एक गहरा भावनात्मक और व्यक्तिगत रिश्ता चाहते हैं और बदले में हमें क्या मिल रहा है? एक कोर्स सिलेबस।
हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है।
मैं अपनी बात करूं तो मैं वो छात्र रही हूं जो सिलेबस सिर्फ इसलिए पढ़ता था ताकि ये पता लगा सके कि कितनी क्लासेस छोड़ने पर फेल नहीं होंगे। क्या ईश्वर को एक सिलेबस देने वाले प्रोफेसर के रूप में देखना इस पूरे रिश्ते को बहुत ही नीरस, अकेडमिक या केवल लेन देन वाला नहीं बना देता? ये नियम है, इन्हें फॉलो करो और जिंदगी का कोर्स पास कर लो। ये थोड़ा सूखा नहीं लगता?
मैं कहूंगी कि ये बहुत ही वाजिब आपत्ति है। अगर हम इसे सिर्फ नियमों की एक सूची मान लें तो ये सच में नीरस लगेगा, लेकिन स्रोत इसे लेन देन यानी ट्रांजैक्शन के रूप में नहीं बल्कि एक साझेदारी के निमंत्रण के रूप में पेश करता है।
साझेदारी? वो कैसे? सिलेबस का उद्देश्य आपको एक ऐसी मशीन बनाना नहीं है जो बिना सोचे समझे आज्ञा का पालन करे, बल्कि इसका उद्देश्य आपको उस बहुत बड़ी योजना का एक सक्रिय हिस्सा बनाना है जो आपकी समझ से परे है।
समझ रही हूँ।
ये जानना कि इस दुनिया के सिलेबस में हमारी भूमिका क्या है शायद सबसे बड़ा और सबसे मुक्तिदायी ज्ञान है। ये ज्ञान हमें उस अहंकार से बचाता है जहां हम सोचते हैं कि हमें पूरे ब्रह्मांड के हर रहस्य, हर पीड़ा के कारण को समझने का अधिकार है।
हाँ, ये बात तो है।
ईश्वर ने हमें वो सब नहीं बताया जो वो जानता है, उसने हमें सिर्फ वो बताया है जो हमें उसके साथ सही तरीके से जुड़ने और साझेदारी करने के लिए जानना जरूरी है।
ये सचमुच एक बहुत ही विनम्र कर देने वाला विचार है। हम ब्रह्मांड के मैनेजर नहीं है, हम सिर्फ भागीदार हैं।
बिल्कुल।
और ये विचार हमें इस पूरी चर्चा के अंतिम और सबसे चुनौतीपूर्ण पड़ाव की ओर ले जाता है। मान लीजिए कि हमने इस सिलेबस को स्वीकार कर लिया।
ठीक है।
हमने ये भी समझ लिया कि बुक ऑफ जोब ऐतिहासिक घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं है बल्कि बुद्धिमत्ता का एक गहरा संदेश है। तो फिर इस प्रामाणिक ग्रंथ को पढ़ने वाले के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? सिर्फ इस ज्ञान को बौद्धिक स्तर पर समझ लेना ही काफी है?
ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और यहीं पर अधिकार या अथॉरिटी का असली मतलब सामने आता है। प्रामाणिकता या अधिकार का मतलब केवल नया ज्ञान प्राप्त करके उसे अपनी लाइब्रेरी में सजा देना नहीं है, इसका मतलब है उस ज्ञान के प्रति समर्पण, सबमिशन।
समर्पण
मतलब हमें उसे पूरी तरह मानना होगा।
स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जब हम किसी किताब या संदेश को प्रमाणिक मान लेते हैं तो हमारे पास ये छूट नहीं बचती कि हम अपनी मर्जी से उसमें से चीजें चुने या छोड़ दें।
यानी पिक एंड चूज नहीं कर सकते, एकदम नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे इस किताब का वो हिस्सा बहुत पसंद है जहाँ ईश्वर के प्रेम की बात है, मैं उसे मान लूंगा, लेकिन जहां ये मेरी समझ से परे जाकर मुझे मेरी सीमित सोच के लिए डांटता है उस हिस्से को मैं नजरअंदाज कर दूंगा।
अरे, ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे हम टैक्स भरते समय सरकार के साथ सौदेबाजी करने लगे।
कैसे?
सोचिए, कोई इंसान टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाए और कहे, सुनिए, मुझे ये जो हाईवे बनाने वाला टैक्स है ये बहुत शानदार लग रहा है, मैं खुशी खुशी वो भरूंगी, लेकिन ये जो डिफेंस या सेना पर खर्च होने वाला टैक्स है ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। क्या कोई सरकार ऐसा होने देगी?
बिल्कुल नहीं।
हाँ, बिल्कुल नहीं होने देगी। ये टैक्स वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है।
जब आप किसी सत्ता या अधिकार के अधीन होते हैं तो आप अपनी शर्तें नहीं थोप सकते।
हाँ, नियम तो नियम है।
बुक ऑफ जॉब अंततः हमसे यही मांग करती है,
यानी हमारे ईगो को साइड में रखना होगा।
बिल्कुल। ये हमसे कहती है कि हम पीड़ा, न्याय और ईश्वरीय कार्य प्रणाली के बारे में अपनी सीमित समझ को स्वीकार करें। यह हमें सिखाती है कि जब हमारे पास सारे सवालों के जवाब न हो तब भी हम उस रहस्यमय ईश्वरीय ज्ञान के प्रति समर्पित रहें।
तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण के धागों को एक साथ पिरोएं तो हमने एक बहुत ही रोमांचक सफर तय किया है।
बेशक, बहुत ही गहरा सफर था ये।
हमने देखा कि कैसे एक प्राचीन ग्रंथ जानबूझकर हमें गलत बातों और भ्रामक तर्कों से भरे हुए रास्ते पर ले जाता है ताकि हम संघर्ष करके असली बुद्धिमत्ता को पहचान सकें। हमने ये भी समझा कि कैसे गहरी सच्चाई हमेशा ऐतिहासिक घटनाओं की सटीकता की मोहताज नहीं होती। कछुए और खरगोश की रेस की तरह संदेश घटना से बड़ा होता है।
सही कहा।
हमने ये भी देखा कि कैसे ये बुद्धिमत्ता हमें ईश्वर का एक सिलेबस देती है, पूरी आत्मकथा नहीं, ताकि हम दुनिया को कंट्रोल करने की जिद छोड़कर एक साझीदार बन सकें। और अंत में कैसे ये प्रामाणिक बुद्धिमत्ता हमसे सिर्फ बौद्धिक सहमति नहीं बल्कि हमारे अहंकार का समर्पण मांगती है।
इस पूरी यात्रा में ना पाठक को केवल दूर बैठा एक मूक दर्शक नहीं रहना है, उसे एक सक्रिय भागीदार बनना है। उसे तर्कों से जूझना है, गलतियों को पहचानना है, घटनाओं की सतह से नीचे गहराई में उतरना है और अंततः एक ऐसे सत्य के प्रति खुद को सौंपना है जो उसकी समझ से कहीं ज्यादा विशाल है।
ये कैसा नजरिया है जो किसी भी ग्रंथ को देखने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मेरे मन में एक ऐसा सवाल आ रहा है जो शायद स्रोत में सीधे तौर पर नहीं लिखा था, लेकिन आज की इस पूरी बातचीत ने उसे जन्म दिया है।
अच्छा, वो क्या है?
हम सब ने देखा कि कैसे बुक ऑफ जॉब जैसी महान किताब में सबसे गहरी बुद्धिमता गलत सोच वाले लोगों जैसे जॉब के उन तीन दोस्तों के तर्कों का विश्लेषण करने से आती है। अब जरा सोचिए, हम अपनी रोजमर्रा की असल जिंदगी में कितनी बार इस तरह की गहरी सीख से चूक जाते हैं।
बहुत बार।
आज के इस शोर शराबे वाले दौर में जब भी कोई व्यक्ति हमसे असहमत होता है या हमें लगता है कि उसका तर्क पूरी तरह गलत है, तो हमारा पहला कदम क्या होता है?
हम तुरंत उसे खारिज कर देते हैं।
हम उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर देते हैं या उससे बात करना बंद कर देते हैं। हम उसी बाइनरी एक्सरे मशीन पर वापस लौट जाते हैं।
हाँ, हम उस इंसान को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं।
लेकिन क्या होगा, क्या होगा अगर अगली बार जब हम किसी को पूरी तरह से गलत पाएं तो हम उन्हें तुरंत खारिज करने के बजाय एक पल के लिए रुकें? क्या होगा अगर हम ये सोचने की कोशिश करें कि वे गलत क्यों हैं?
ये तो नजरिया ही बदल लेगा।
क्या होगा अगर हम उनके उस 99% सच और 1% झूठ की विषमता का गहराई से विश्लेषण करें? क्या ये संभव है कि जो व्यक्ति हमारे सामने बिल्कुल गलत खड़ा है, वो अनजाने में हमें हमारे अपने सच की कमजोरियों के बारे में कुछ बहुत नया और गहरा सिखा सकता है?
ये सच में सोचने वाली बात है।
शायद हमारे आसपास के सबसे गलत विचारों में ही हमारे लिए सबसे बड़े सबक छिपे हों, बस हमें उन्हें एक फेथफुल इंटरप्रेटर की तरह पढ़ना आना चाहिए। हम जल्द ही एक नए स्रोत, एक नए विषय और एक नए गहन विश्लेषण के साथ वापस आएंगे। तब तक अपने आसपास के उस धुंधलेपन में छिपी स्पष्टता को खोजने की कोशिश करते रहें।